दिन भर तारीख 20 दिसंबर दिन गुरुवार, मैं हूँ मानसी दास। जम्मू कश्मीर के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस लाएगी क्षेत्रीय स्वायत्तता का प्रस्ताव, फारूक अब्दुल्ला ने कहा।
अल्लाह ताला हुकूमत देगा पहले 30 दिन में।
उपेंद्र कुशवाहा ने थामा महागठबंधन का दामन।
शायद ही कोई सभा बिहार में हुई हो जिसमें श्री नरेंद्र मोदी जी ने यह नहीं कहा हो कि बिहार के लोगों को पढ़ाई के लिए, कमाई के लिए अब बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा।
छत्तीसगढ़ सरकार ने बीजेपी सरकार की मुफ्त मोबाइल फोन योजना पर लगाई रोक।
मोबाइल की बड़ी शिकायतें आई कि चार्ज नहीं हो रहा है, गर्म हो रहा है, फट रहा है, किसी की मौत भी हो गई है। तो ये
होंगी खबरें और भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, भूमिका राय से। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि अगर अगले विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को बहुमत मिलता है तो वो 30 दिनों के अंदर राज्य को स्वायत्तता देने का प्रस्ताव पारित करेंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि वो अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस आकलन से काफ़ी हद तक सहमत हैं कि सीरिया में इस्लामिक स्टेट गठबंधन की हार हो चुकी है, मगर पुतिन ने चेताया कि इस्लामिक चरमपंथी सीरिया के पड़ोसी देशों में घुसपैठ कर रहे हैं। पुतिन ने यह भी कहा कि उन्हें नहीं लगता कि अमरीकी सेनाएं सीरिया से हट जाएंगी। पुतिन ने कहा कि अमरीका ने अफगानिस्तान को लेकर भी ऐसा ही कहा था, मगर ऐसा हुआ नहीं। सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्वी यूक्रेन में रूस के हस्तक्षेप को लेकर यूक्रेन के एक पत्रकार के सवाल के जवाब में पुतिन ने कहा, उकसा कर हालात को गंभीर किया गया। ये भी समझ में आता है कि यूक्रेन के हमारे सहयोगियों ने ऐसा क्यों किया। उनके यहाँ चुनाव होने जा रहे हैं, वे इस मामले को इसलिए तूल देना चाहते हैं ताकि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यानी मौजूदा राष्ट्रपति के प्रति समर्थन को बढ़ाया जा सके, लेकिन ये ठीक नहीं है। कुल मिलाकर ये उनके लोगों और उनके देश के हित में नहीं है। ये थे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के शब्द। तुर्की के रक्षा मंत्री ने उत्तरी सीरिया में कुर्द लड़ाकों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की चेतावनी दी है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सीरिया से अमरीकी सैनिक हटाने के ऐलान के अगले दिन ही ये चेतावनी दी गई है। कतर में तुर्की के विदेश मंत्री हुलुसी अकार ने कहा कि सीरिया में मौजूद कुर्द YPG लड़ाकों को सही समय पर आने पर उन्हीं की खोदी खाइयों में दफन कर दिया जाएगा। अमेरिका ने सीरिया में इस्लामिक स्टेट से लड़ने में YPG का समर्थन किया था, मगर तुर्की इस संगठन को प्रतिबंधित कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी का ही अंग मानता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उत्तरी सीरिया से अपने सैनिक हटाने के फैसले का बचाव किया है, मगर फ्रांस की एक मंत्री ने कहा है कि फ्रांस के सैनिक अभी भी वहां तैनात रहेंगे। यूरोपीय मामलों के लिए फ्रांस की मंत्री नैथली लुएजा ने सी न्यूज से कहा कि तथाकथित इस्लामिक स्टेट समूह के लड़ाकों को अभी पूरी तरह से नहीं हराया गया है। उन्होंने कहा कि ट्रंप का फैसला बताता है कि यूरोप को अपनी सुरक्षा के लिए स्वतंत्र होकर काम करना चाहिए।
Écoutez, j'en pense que on a eu une attaque terroriste à Strasbourg il y a quelques jours.
देखिए, कुछ दिन पहले ही स्ट्रासबर्ग में आतंकवादी हमला हुआ है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई खत्म नहीं हुई है। बेशक हमने मिलकर इसमें बहुत प्रगति की है, लेकिन लड़ाई जारी है और हम इसे यूं ही जारी रखेंगे। ये थे यूरोपीय मामलों के लिए फ्रांसीसी मंत्री के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। स्पेन के तटरक्षकों ने कहा है कि उन्हें अंडलुसिया प्रांत पहुंचने की कोशिश कर रही अफ्रीकी नाव से 11 शव मिले हैं। उन्होंने कहा कि दो दिनों तक उन्होंने स्पेन के दक्षिणी तट और मोरक्को के पास इस नाव को तलाश किया था। स्पेनिश रेड क्रॉस को करीब 30 लोगों को बचाने में कामयाबी मिली है। स्पेन अफ्रीका से आने वाले अवैध प्रवासियों के लिए यूरोप में घुसने का प्रवेश द्वार बन गया है। इसी साल 50,000 से ज़्यादा प्रवासी समंदर के रास्ते यहाँ आए हैं। इस दौरान करीब 750 ने यात्रा के दौरान ही जान गंवा दी। लंदन के पास गैटविक ब्रिटेन का दूसरा सबसे व्यस्त एयरपोर्ट है, मगर रनवे के पास अज्ञात शख्स ड्रोन उड़ा रहा है। इस कारण सुबह से एयरपोर्ट को बंद करना पड़ा है। पुलिस ड्रोन उड़ा रहे शख्स का पता लगाने की कोशिश कर रही है। उड़ानें रद्द होने के कारण करीब 1,00,000 यात्री प्रभावित हुए हैं। जापानी शासन के दौरान जबरन मजदूर बनाए गए 1,000 से अधिक दक्षिण कोरियाई लोगों ने मुआवजे को लेकर अपनी सरकार पर मुकदमा किया है। BBC समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की दूसरी सभा दिन भर सुन रहे सभी श्रोताओं को मानसी दास का नमस्कार। ये कार्यक्रम आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी लाइव सुन सकते हैं। सबसे पहले रुख भारत प्रशासित जम्मू कश्मीर का, जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके फारूक अब्दुल्ला ने एक बार फिर क्षेत्रीय स्वायत्तता यानी रीजनल ऑटोनॉमी के प्रस्ताव को मंजूरी देने की बात की है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा हासिल है। राज्य में बीजेपी पीडीपी सरकार के गिरने के बाद वहां राज्यपाल शासन लग गया था, जो दिसंबर की 18 तारीख को खत्म हुआ था। इसके बाद वहां अब राष्ट्रपति शासन है। सुनिए जम्मू कश्मीर से हमारे सहयोगी मोहित कंधारी की रिपोर्ट।
गर्मजोशी से विधानसभा चुनावों की तैयारी में जुटे जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने एक मर्तबा फिर रियासत में क्षेत्रीय स्वायत्तता की बात कही है। आज जम्मू में शेर कश्मीर भवन में पार्टी के एक कार्यक्रम में डॉक्टर अब्दुल्ला ने कहा कि चुनाव जीते तो वो जम्मू कश्मीर में क्षेत्रीय स्वायत्तता का प्रस्ताव पारित करवाएंगे।
अटॉनमी का रेजोल्यूशन लाएंगे, जो कि लोगों के रीजनल अटॉनमी जो उनके दिलों को छू रही है।
नेशनल कॉन्फ्रेंस पहले भी बार बार स्वायत्तता का मुद्दा उठाती रही है। इससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने साल 2000 में राज्य विधानसभा में स्वायत्तता को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया था, लेकिन केंद्र की तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने इस प्रस्ताव को खारिज कर ठंडे बस्ते में डाल दिया था। फिलहाल जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन खत्म होने के बाद राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है, लेकिन ये ऑटोनॉमी क्या है, इस पर जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के वकील शेख शकील अहमद कहते हैं,
प्री-53 का स्टेटस जो है वो हमारी रियासत में रिस्टोर करना चाहते हैं, और इसका सबसे बड़ा जो मैं समझता हूँ कि एक जो प्रोग्रेसिव सिटीजन है हमारी रियासत जम्मू कश्मीर का, जिसको सबसे ज्यादा ये बात समझाने की जरूरत है कि सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन जो है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ज्यूरिसडिक्शन जो है वो ओस्ट हो जाएगी, फिर उसके अलावा यूपीएससी हो गया, जिसका ये नेशनल कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की जो ज्यूरिसडिक्शन है हमारी रियासत के ऊपर फॉर ऑडिटिंग ऑफ द अकाउंट्स। तो मुझे ये लगता है कि एक मिनी जिसे कहते हैं, एक मिनी वर्ल्ड जिसे कहते हैं रियासत जम्मू कश्मीर हो जाएगा विद इन इंडियन स्टेट जिसे कहते हैं।
शेख शकील ने कहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस को ऐसा लगता है कि बीजेपी पीडीपी गठबंधन टूटने के बाद रियासत में जो हालात पैदा हुए हैं, ऑटोनॉमी का नारा देकर वो अपने लिए जगह तलाश कर सकती है।
और मुझे ये लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को ऐसा लगता है कि जो बीजेपी पीडीपी सरकार का जो फेलियर था, ये लोग चल नहीं पाए, वो जो स्पेस इनके लिए बनी है, मुझे लगता है उस स्पेस को, और क्योंकि जिस तरह से ये लोग कहते हैं कि कश्मीर में काफ़ी एलिनेशन है, मुझे लगता है उस गैप को ये फिल करने के लिए बार बार ये जो ऑटोनॉमी की बात करती है नेशनल कॉन्फ्रेंस।
शेख शकील कहते हैं कि ऑटोनॉमी की बात करके नेशनल कॉन्फ्रेंस रियासत को पीछे धकेलने की बात कर रही है, और ऐसा करना रियासत के हक में नहीं है। वो कहते हैं कि ऐसा लगता है सिर्फ चुनाव के समय स्लोगन देकर वो जनता को गुमराह करने की बात कर रहे हैं। इससे पहले राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री व डॉक्टर अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला भी बार बार ये बात कह चुके हैं कि क्षेत्रीय स्वायत्तता ही रियासत के लिए एक व्यवहारिक समाधान है। बीबीसी के लिए जम्मू से मोहित कंधारी।
नरेंद्र मोदी सरकार ने केंद्रीय मानव संसाधन राज्य मंत्री उपेंद्र कुशवाहा आज अपने दल के साथ यूपीए में शामिल हो गए हैं। बिहार के सांसद और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने इसी माह मोदी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। वो भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व वाली एनडीए से भी अलग हो गए थे। कुशवाहा वोटरों की बिहार में खासी तादाद है। सुनिए फैसल मोहम्मद अली की ये रिपोर्ट।
दिल्ली के एक राजनीतिक दल के कार्यालय में फिर एक के बाद एक दूसरे वक्ता ने कहा कि वहां बैठे लोग जो नया गठबंधन तैयार करने की प्रक्रिया में हैं, वो खुदगर्जी के बिना पर नहीं बल्कि विचारधाराओं के मेल के आधार पर बनाई जा रही है। ये कुर्सी के लिए नहीं, सिद्धांतों के लिए हो रहा है, और इसका लक्ष्य है मुल्क को बर्बादी से रोकना, संविधान की रक्षा करना। और कुछ दिनों पहले तक नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री रहे उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के खिलाफ तैयार हो रहे महागठबंधन का हिस्सा हो गए। बिहार की पिछड़ी जातियों में गिने जाने वाले कुशवाहा समुदाय के उपेंद्र कुशवाहा ने याद किया साल 2014 जब वो एनडीए में शामिल हुए थे, और उस समय नरेंद्र मोदी ने बिहार को लेकर कई वायदे किए थे।
आप लोगों को भी याद होगा कि शायद ही कोई सभा बिहार में हुई हो जिसमें उस समय के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार श्री नरेंद्र मोदी जी ने यह नहीं कहा हो कि बिहार के लोगों को पढ़ाई के लिए, दवाई के लिए, कमाई के लिए अब बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। बड़ी संख्या में नौजवानों का पलायन, मजदूरों का पलायन दूसरे प्रदेशों में आज भी होता है और अपमानित होने के लिए भी बिहार के लोग मजबूर होते हैं, दूसरे राज्यों में जाते हैं।
चंद दिनों पहले मध्य प्रदेश में बनी कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही साफ कर दिया कि सूबे में रोजगार के जो अवसर मुहैया करवाए जाएंगे उसमें बिहारियों और उत्तर प्रदेश वासियों का हिस्सा कम होगा। कांग्रेस भी उस महागठबंधन का हिस्सा है जिसमें कुशवाहा आज औपचारिक तौर पर शामिल हो गए। उपेंद्र कुशवाहा बिहार में सीटों के बंटवारे को लेकर नाराज थे और फिर उन्होंने एनडीए गठबंधन छोड़ दिया था। दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में समाजवादी नेता शरद यादव के अलावा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल और आरजेडी के तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। तेजस्वी यादव चाचा नीतीश और मोदी पर खूब बरसे।
बिहार को जो मोदी जी ने, आप लोगों ने सुना होगा, चुनाव के समय आए थे तो उन्होंने बिहार की बोली लगाई थी, 70,000 करोड़ दूं कि 80,000 करोड़ दूं कि 90,000 करोड़ दूं, चलो 1,25,000 करोड़ रुपया दिया। आज मोदी जी से बिहार की जनता हिसाब मांग रही है कि कितना दिया। और हम तो ये भी पूछना चाहते हैं हमारे चाचा नीतीश जी से कि आप बता दीजिए आपको कितना दिया, बिहार को कितना दिया। अगर कुछ भी दिया होगा तो हम भी धन्यवाद दे देंगे मोदी जी को फोन करके।
उपेंद्र कुशवाहा ने ऐलान किया है कि वो 2 फरवरी को पटना में अपनी 25 सूत्री मांग को लेकर एक आक्रोश मार्च निकालने जा रहे हैं। फैसल मोहम्मद अली, बीबीसी दिल्ली।
माफ कीजिएगा, 5 राज्यों के चुनावों में भाजपा को मिली हार के बाद पार्टी की राजनीतिक चुनौतियां अब बढ़ने लगी हैं। बीते करीब 5 साल से भाजपा की अगुवाई वाले एनडीए के भरोसेमंद सहयोगी दल लोक जनशक्ति पार्टी यानी लोजपा अब केंद्र सरकार से उसके कामकाज का हिसाब मांग रही है, सीट बंटवारे के लिए अल्टीमेटम दे रही है। क्या लोजपा उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी की तरह एनडीए से दूर होने की भूमिका तैयार कर रही है या ये उसकी दबाव की रणनीति है? सुनिए पटना से हमारे सहयोगी मनीष शांडिल्य की रिपोर्ट।
एनडीए से बाहर हो चुके उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोसपा के बाद बिहार की ही एक दूसरी पार्टी लोजपा ने भाजपा को अल्टीमेटम दिया है। पार्टी ने भाजपा से लोकसभा की 7 सीटें मांगी हैं और बिहार एनडीए में सीट शेयरिंग के लिए 31 दिसंबर तक का अल्टीमेटम दिया है। इतना ही नहीं, पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष और सांसद चिराग पासवान ने नरेंद्र मोदी सरकार से कई चुपते सवाल पूछे हैं और सरकार की उपलब्धियों का हिसाब मांगा है। इनमें नोटबंदी और रफाल विमान सौदे से जुड़े सवाल शामिल हैं जिनको लेकर कांग्रेस मोदी सरकार पर लगातार हमलावर है। ऐसे में मैंने लोजपा प्रवक्ता अशरफ अंसारी से पूछा कि क्या उनकी पार्टी एनडीए से बाहर होने की भूमिका तैयार कर रही है या यह उसकी दबाव की रणनीति है। उनका जवाब था,
न तो बाहर निकलने का भी प्रयास कर रही है और न सीटों की बात। हमारी पार्टी के संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान ने कुछ बिंदुओं पर अपनी चिंता जाहिर की है कि 4.5 साल में हमारी सरकार ने चूंकि एनडीए का जो स्वरूप था, एनडीए का स्वरूप ही था विकास की, तो विकास पे हम कहाँ हैं, कितने आगे हैं, इसकी जानकारी तो होनी चाहिए। एनडीए के शीर्ष नेतृत्व की बैठक हो रही है और जल्द ही इसका कुछ निर्णय निकल जाएगा।
लोजपा की ही तरह भाजपा को भी लगता है कि दोनों दलों के बीच गतिरोध का हल निकाल लिया जाएगा। बिहार भाजपा के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल कहते हैं,
जहाँ तक आप रामविलास पासवान जी की बात करते हैं, रामविलास पासवान जी ने आज तक कभी नहीं बोला है और रामविलास पासवान जी एनडीए के बहुत मजबूत साथी रहे हैं। सरकार के हर नीतियों के साथ, हर कार्यक्रमों के साथ, मजबूती के साथ वह खड़ा रहे हैं। कुछ अगर नाराजगी भी होगी तो हमारे केंद्रीय नेतृत्व उनसे संपर्क में है, कोई शंका समाधान होगा उसको दूर कर करके हम रामविलास पासवान जी को मनाने का काम करेंगे और साथ साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे।
जानकारों का मानना है कि लोजपा बदले राजनीतिक हालात में कई विकल्पों को ध्यान में रखकर अपने कदम आगे बढ़ा रही है। वरिष्ठ पत्रकार अजय कुमार बताते हैं,
बदलती राजनीति के हिसाब से जो उनके बयान बदल रहे हैं तो इसके 2 मतलब निकाले जा सकते हैं। एक की अभी शुरुआती दौर में ये देख रहे हैं कि महागठबंधन किस आकार में आगे बढ़ रहा है, दूसरा कि अगर हम एनडीए में रहते हैं तो अपनी बात मनवा लें और उस बात में ये है कि एक राज्यसभा की सीट मिल जाए, 6 लोकसभा की सीट मिल जाए।
इन सबके बीच भाजपा ने अपनी सहयोगी की नाराजगियों को सुनने और दूर करने की पहल की है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव ने आज पहले रामविलास और चिराग पासवान से दिल्ली में मुलाकात की, फिर इन तीनों नेताओं ने कुछ देर पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात की। मनीष चांडिल्ले, BBC पटना।
और अब कार्यक्रम में रुख छत्तीसगढ़ का। यहाँ की कांग्रेस सरकार ने पिछली सरकार द्वारा 55 लाख लोगों को मुफ्त मोबाइल फोन बांटने की योजना पर रोक लगा दी है। इस साल की शुरुआत में राज्य की भाजपा सरकार ने संचार क्रांति योजना के तहत 2 साल में लोगों को फोन बांटने का फैसला किया था। चुनाव से ठीक पहले इसका वितरण भी शुरू कर दिया गया था, लेकिन अब राज्य की कांग्रेस सरकार में रोक के बाद भाजपा भी इस योजना से पल्ला झाड़ने के मूड में नजर आ रही है। सुनिए रायपुर से हमारे सहयोगी आलोक पुतुल की रिपोर्ट।
इस साल फरवरी में राज्य की भाजपा सरकार ने लोगों को सूचना तकनीक से लैस करने का हवाला देकर 55 लाख लोगों को मुफ्त मोबाइल फोन बांटने का फैसला लिया था। चुनावी साल में इस फैसले पर अमल भी शुरू कर दिया गया और अब तक 35 लाख से अधिक मोबाइल फोन बांट भी दिए गए। लेकिन शुरू से ही मुफ्त मोबाइल बांटने की योजना का विरोध कर रही कांग्रेस पार्टी ने अब अपनी सरकार बनने के बाद मुफ्त मोबाइल फोन बांटने की योजना पर रोक लगा दी है। राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कहा कि इस योजना को लेकर शिकायतों के कारण यह निर्णय लिया गया।
मोबाइल की बड़ी शिकायतें आई कि चार्ज नहीं हो रहा है, गर्म हो रहा है, फट रहा है, किसी की मौत भी हो गई है, तो ये बहुत एक भय का वातावरण तो है ही। खटिया मोबाइल के कारण से लोगों में नाराजगी भी रही है, उसकी समीक्षा की जाएगी।
लेकिन यह दिलचस्प है कि कुछ महीने पहले तक इस योजना का लाभ गिनाते नहीं थकने वाली भाजपा भी अब मान रही है कि इस योजना पर रोक लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाजपा के प्रवक्ता श्रीचंद सुंदरानी ने कहा कि इस योजना पर रोक सरकार का विशेषाधिकार है।
देखिए, अब ये तो सरकार के अधिकार क्षेत्र की बात, जिनको फ्री में मोबाइल मिलना था उनको नुकसान होगा, और मोबाइल तो आम आदमी की आवश्यकता है, सरकार नहीं देगी तो खुद का खरीद के करें, लाभ लेगा, जीवन पे कोई बड़ा असर नहीं होने वाला, तो क्या असर पड़ेगा आम आदमी के जीवन।
अगर भाजपा यह मानती है कि इस योजना पर रोक से आम जनता के जीवन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आखिर आपकी सरकार ने इस योजना को शुरू क्यों किया था?
अब ये तो सचिव और तत्कालीन जो अधिकारी हैं या सरकार पे बैठे लोग ही बता पाएंगे इसका क्या लाभ था, क्या हानि था।
फिलहाल जबकि कांग्रेस के सरकार ने पुरानी सरकार की मुफ्त मोबाइल बांटने की योजना पर रोक लगा दी है, तब लोगों की नजरें इस बात पर लगी हुई हैं कि पुरानी सरकार की किन किन योजनाओं पर कांग्रेस पार्टी की सरकार रोक लगाने का काम करेगी या उन योजनाओं में बदलाव करेगी। आलोक पुतुल, BBC छत्तीसगढ़।
BBC के वर्षांत कार्यक्रमों की श्रृंखला में सुनिए, पॉर्न देखने का महिलाओं के खिलाफ हिंसा से क्या है संबंध।
मैं किसी भी फीमेल से मिलता था, दिमाग में मैं इमेजिन करने लगता था एक सेक्सुअल एक्ट उनको लेके।
क्या सिनेमा इंडस्ट्री पर हावी हो रही है वेब सीरीज?
हॉलीवुड की पिक्चर भी कुछ नहीं उसके सामने।
रिहान फजल सुनाएंगे बिकिनी किलर चार्ल्स शोभराज की जिंदगी के किस्से।
मैं उधर से अपनी जगह से उठा और जाके पीछे से उसको एकदम घट पकड़ के चिल्लाए, चार्ल्स।
BBC इंडिया बोल का विशेष अंक जिसमें श्रोताओं के विचारों और अपेक्षाओं को मिलेगी जगह। BBC के खजाने से सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर का विशेष साक्षात्कार।
मेरे पिताजी के साथ थोड़े से वर्ष मैंने गुजारे हैं जो उन्होंने मुझे गाना सिखाया।
कौन है वो युवा राजनेता जो अगले 20 सालों में कर सकते हैं भारत का नेतृत्व? सुनिए दिन भर में ये सब 25 दिसंबर से 1 जनवरी तक।
हम अब तक ये मानते रहे हैं कि पाउडर लगाने से लोग गोरे होते हैं, लेकिन क्या पाउडर लगाने से कैंसर हो सकता है? फार्मास्यूटिकल कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन के बेबी पाउडर, जो कि भारत में भी काफी लोकप्रिय है, उसे लेकर कई दावे किए गए हैं कि इस पाउडर के इस्तेमाल से गर्भाशय का कैंसर हो सकता है। इस मामले पर पूरी जानकारी के लिए अब से थोड़ी देर पहले मैंने बात की BBC संवाददाता भूमिका राय से, आप भी सुनिए। भूमिका, हमारे श्रोताओं को बताएं कि ये मामला कब और कैसे सामने आया।
जी मानसी, ये पूरा मामला अमेरिका से शुरू हुआ है। एक अमेरिकी महिला ने जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी पर आरोप लगाया था कि जो इसका टेलकम पाउडर है, जो बेबी पाउडर है, उसके इस्तेमाल से उसे गर्भाशय का कैंसर हो गया। इसके बाद कैलिफोर्निया की एक अदालत ने इस कंपनी को करीब 27 अरब रुपये हर्जाना देने का आदेश सुनाया। इस मामले में जजों का कहना था, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट बात थी इस पूरे मामले में, कि पाउडर में एस्बेस्टस का इस्तेमाल होता है, जिससे होने वाले खतरे के बारे में उपभोक्ताओं को कंपनी ने नहीं बताया था।
क्या यह अकेला मामला है? और अगर ऐसा है कि यह अकेला मामला है, तो इसकी बिना पर कंपनी को कसूरवार ठहराना कितना सही होगा?
मानसी, मैं बता दूं कि यह अकेला मामला नहीं है। न्यू जर्सी में मौजूद जॉनसन एंड जॉनसन के मुख्यालय में भी हजारों महिलाओं ने यह दावा किया कि पाउडर लगाने के बाद उन्हें गर्भाशय का कैंसर हुआ है। उनका दावा था कि वो इस पाउडर का इस्तेमाल गुप्तांगों के पसीने को सोखने के लिए करती थी, जिसकी वजह से उन्हें गर्भाशय का कैंसर हो गया।
इस मामले में कंपनी का क्या कहना है? भूमिका, क्या आपने कंपनी से बात की है?
कंपनी इन तमाम दावों को गलत बता रही है। बीबीसी को भेजे गए एक ईमेल में कंपनी ने दावा किया है कि उन्होंने करीब 1,00,000 महिलाओं और पुरुषों पर अध्ययन किया है और पाया है कि पाउडर जो है वो पूरी तरह सुरक्षित है। लेकिन इस मामले का असर अब भारत में दिख रहा है। कुछ भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि जॉनसन एंड जॉनसन बेबी पाउडर की गुणवत्ता की जांच के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के 100 से ज्यादा ड्रग इंस्पेक्टर्स कंपनी के कार्यालयों, होलसेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर से सैंपल जमा करेंगे और अब इसकी जांच करेंगे।
मंत्रालय से आपकी कुछ बात हो पाई?
हमने बहुत कोशिश की कि हम केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण यानी CDSCO से जानकारी मांगे और हमने उनसे इस बारे में जानने की कोशिश भी की। उन्होंने ये तो माना कि ये मामला उनके जानकारी में है, लेकिन किस तरह की कार्रवाई की जा रही है या आगे किस तरह की कार्रवाई की जाएगी, इस पर उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की।
जी, हाल में भूमिका एक रिपोर्ट आई थी रॉयटर्स की, जिसमें ये कहा गया था कि जॉनसन एंड जॉनसन को दशकों से इस बात का पता था कि उनके बेबी पाउडर में एस्बेस्टस है।
हाँ, ये सालों से चिंता का विषय तो है ही, लेकिन इस मामले में निर्णायक सबूत अब भी नहीं है। अंतरराष्ट्रीय शोध संस्थाओं के मुताबिक अगर आप टेलकम पाउडर जिसमें एस्बेस्टस होता है अगर उसका इस्तेमाल गुप्तांगों पर कर रहे हैं तो कैंसर हो सकता है। और देखा जाए तो साल 1970 के दशक से ही बेबी पाउडर और अन्य कॉस्मेटिक उत्पादों में एस्बेस्टस जो है वो इस्तेमाल किया जाता रहा है। मैंने सर गंगाराम अस्पताल में स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर रोहित बत्रा से बात की।
एस्बेस्टस जो होता है सभी टेलकम पाउडर्स में होता है, एक तरह की एस्बेस्टस सैंड कहते हैं उसको, कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो पार्टिकल अगर बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर बॉडी के अंदर कहीं इकट्ठा हो जाए तो वहाँ रेयरेस्ट और रेयर केस के अंदर ऐसा हो सकता है।
दिल्ली में प्रैक्टिस करने वाले ही डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर ऋषि पराशर से भी मैंने बात की इस मामले पर। उन्होंने भी वैसी ही कुछ बातें की जैसी डॉक्टर रोहित बत्रा ने की। उन्होंने कहा कि बच्चों और बड़ों के लिए बनने वाले पाउडर में कोई खास अंतर तो होता नहीं है, और जो पाउडर है वो खनिज और रसायनों का मिश्रण है, और अगर आप ज्यादा रसायनों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो खतरा तो है ही।
बेबी पाउडर से भी हो सकता है कैंसर का खतरा, पूरी जानकारी दे रही थी बीबीसी संवाददाता भूमिका राय। और अब कार्यक्रम में वक्त है आपकी चिट्ठियां पढ़ने का।
नमस्कार, आपकी राय में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुकेश शर्मा और मेरे साथ हैं
सूर्यांशी पांडे।
सूर्यांशी, क्या कह रहे हैं आज हमारे जितने भी श्रोता हैं वो?
आज सबसे पहला खत हम लेंगे गुजरात से, और ये भेजा है धीरू भाई पटेल ने, जो ये लिखते हैं कि मैं बीबीसी का नियमित श्रोता हूँ और करीब 40 साल से बीबीसी को सुन रहे हैं। इन्होंने लिखा है कि रेहान फजल की विवेचना, दुनिया जहां और डायरी मुझे बेहद पसंद है, और मेरा ये खत जो है ये प्रथम खत है।
40 साल में धीरू भाई ने पहली बार ये चिट्ठी लिखी है, बहुत ही अच्छा लगा ये जान करके। आप इसी तरह, उम्मीद है ये आखिरी पत्र नहीं होगा आपका। हाँ। इसी तरह आप पत्र लिखते रहिए, और कई बार ये भी होता है कि पत्र शामिल नहीं होता तो लोग नाराज हो जाते हैं, लेकिन ये भी देखना चाहिए कि इतने सारे श्रोता अपना प्यार इन पत्रों के जरिए हमें भेजते हैं। सब लोगों का हर बार शामिल नहीं हो पाता, पर कोशिश हमारी रहती है कि अलग अलग तरह के पत्र हम ले सकें इस कार्यक्रम में। तो धीरू भाई, पत्र जरूर लिखते रहिएगा,
और इसीलिए शायद इन्होंने हिदायत भी दी है कि अगर आपने खत नहीं लिया तो ये अंतिम बार भी हो सकता है।
और इसीलिए मैंने पहले ही ये बात कह दी है, और उम्मीद है इसके बाद धीरू भाई अब नाराज नहीं होंगे।
और ये अगला खत भेजा है कमलेश कुमार सक्सेना जी ने, और ये कोटद्वार से लिखते हैं उत्तराखंड। इन्होंने लिखा है, पहले तो मैं बोलूंगी कि इनकी लिखाई थोड़ी जटिल है समझने में, लेकिन समझा गया है तो ये समझा गया है कि 30 अक्टूबर को जो फैजल मोहम्मद अली जी की रिपोर्ट थी भारत की आज की वित्तीय स्थिति पर, वो उन्हें बेहद पसंद आई है, और उन्होंने खुद ये बात लिखी है कि मेरी खराब हैंडराइटिंग है, इसके लिए माफी।
खराब हैंडराइटिंग के बावजूद सूर्यांशी आपने पत्र पढ़ लिया, समझ लिया कि क्या लिखना चाह रहे थे कमलेश जी। कमलेश जी, बहुत अच्छा लगा कि आपको फैसल की ये रिपोर्ट अच्छी लगी, और जो भी जटिल विषय हो हमारी कोशिश ये होती है कि उन्हें आसान शब्दों में और आसान तरीके से समझाया जा सके, ताकि विषय सबकी की समझ में आए और लोग उस पर अपनी एक सोच बना सकें, उसी की कोशिश थी।
ये अगला खत जो है वो गुलाबी रंग से सजा है और उसके अंदर ये थोड़ा सा वायलेट कलर भी वो दिख रहा है, और ये खत लिखा है मदन लाल लंबोरिया ने, जो लिखते हैं राजस्थान हनुमानगढ़ से लिखते हैं। ये लिखते हैं कि बीबीसी पर प्रसारित नमस्कार भारत और दिनभर कार्यक्रम में निष्पक्ष और सटीक समाचार सुनने को मिलते हैं। दुनिया जहां विवेचना और न्यूज मेकर की तो बात ही निराली है।
मदन लाल जी, बहुत अच्छा लगा आपको हमारे कार्यक्रम पसंद आ रहे हैं, और हम हमेशा ही कहते हैं कि कार्यक्रम हम आप सबके लिए बनाते हैं, आप लोग उसके केंद्र में होते हैं, आपको ध्यान में रख के कार्यक्रम बनाए जाते हैं, और यही वजह है कि आपकी प्रतिक्रिया जानने के लिए हम उत्सुक भी रहते हैं। जब आपको वो कार्यक्रम पसंद आते हैं, आप अपने पत्रों के जरिए हमें बताते हैं, तो उससे हमारा उत्साह वर्धन होता है, और उसी तरह से कार्यक्रम अच्छे बनाए रखने पर हम जोर देते रहते हैं।
और अब हम मेल की तरफ बढ़ते हैं, तो यहाँ पर पहला ईमेल हम रमेश और आदर्श का लेते हैं। ये दोनों बीएससी के छात्र हैं और पटना बिहार से लिखते हैं, और पॉइंटर्स में लिखा एकदम साफ स्पष्ट कि खेल खिलाड़ी में आदर्श कुमार गुप्त की कमी खल रही है उन्हें, और दिन भर में आशुतोष सिन्हा की किसानों के कर्ज माफी पर विश्लेषण काफी अच्छा लगा, और संदीप सोनी द्वारा दुनिया जहां की प्रस्तुति काबिले तारीफ थी।
चलिए, बहुत अच्छा लगा कि कार्यक्रम अच्छे लग रहे हैं। आदेश जी, कई बार हो सकता है कि कार्यक्रम में ना पाए, और हम सबको कभी कभी छुट्टी की जरूरत भी तो होती है, तो कई बार वो भी छुट्टी ले लेते हैं। पर ये देखिए, ये आप लोगों का प्यार ही है कि इस चिट्ठी के जरिए हमें पता चलता है कि आप उन्हें मिस कर रहे हैं, उनका नहीं होना, और जब वो लौटेंगे तो हम ये बात उन तक जरूर पहुंचा देंगे।
अगला खत सादिक आजमी जी लिखते हैं सऊदी अरब से, और ये लिखते हैं कि जर्मनी की राजनीति में हुए घमासान और भविष्य के संभवतः बदलाव के संकेत की सही पड़ताल करती संदीप सोनी जी की प्रस्तुति अच्छी तो लगी, लेकिन कहीं ना कहीं संदीप जी की प्रस्तुति में आंकड़ों का जो है वो सूनापन था, उसकी कमी नजर आई।
कई बार क्या होता है सादिक साहब कि आंकड़े देने में ना कई बार लोग उलझ जाते हैं, क्योंकि आंकड़ों की बात की तो जा सकती है, लेकिन हर चीज आंकड़ों से ही नहीं समझाई जा सकती। कई बार आप उन्हें आंकड़ों से हट करके और जो ग्राउंड रियलिटी जो या जो यथास्थिति होती है वो समझाने के लिए दूसरी चीजों का सहारा लेना पड़ता है। अब मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आंकड़े नहीं होने चाहिए, आपने ये बात कही है, ये हम जरूर आगे पहुंचा देंगे कि आंकड़े भी रहें। हमारी पूरी कोशिश ये रहती है कि सरकारें या दूसरे संगठन जो चीजें प्रस्तुत कर रहे हैं, पेश कर रहे हैं, उनका असली मतलब क्या है वो लोगों तक पहुंचाया जा सके, उसी पे जोर है हमारा।
अगला ईमेल गौतम दत्ता ने लिखा है किशनगंज बिहार से, और वो ये लिखते हैं कि हामिद अंसारी के बारे में सुनकर उन्हें बेहद दुख हुआ, और वाघा बॉर्डर से रविंद्र सिंह रॉबिन और पाकिस्तान से शुमैला जाफरी की रिपोर्टिंग सुनकर गम भी हुआ और खुशी भी दोनों ही मिली। और फिर उन्होंने लिखा है कि विभिन्न राज्यों द्वारा किसानों के ऋण माफी पर जो खबरें बीबीसी लगातार दे रहा है वो उन्हें बेहद पसंद आ रही हैं। संदीप सोनी की दुनिया जहां उन्हें जर्मनी पे जो की गई थी वो बहुत अच्छी लगी, और उन्होंने मेरी भी तारीफ की है कि खेल समाचार को एक अलग अंदाज में पेश करने के लिए शुक्रिया। तो आपका भी शुक्रिया,
आपने अपनी तारीफ खुद ही पढ़ भी ली, आप तक तो पहुंच भी गई सीधी सीधी तारीफ। अब आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप संदीप सोनी तक उनकी जो तारीफ है वो भी पहुंचा दीजिएगा कि उसको पसंद किया गया है। और जिस तरीके से किसानों की बात कुछ और पत्रों में भी आई है, हमारी कोशिश होती है कि समाज के हर तबके की जो समस्याएं हैं या उनको जो छूने वाले मुद्दे हैं, मसले हैं, उन तक हम भी रहें और हम उनकी पड़ताल करते रहें, उसी की एक कोशिश के तहत ये किया गया है। आप लोगों को अच्छी लग रही हैं ये कोशिशें, ये हमारा इस साल हमने किया और अब तो साल ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे, अगले साल भी हम वादा करते हैं कि हम इसी अपने जो हमारा एजेंडा है लोगों से जुड़ा हुआ कि उनके मतलब की बात की जाए, उस पे हम लोग बने रहेंगे। और इसी के साथ अब चिट्ठियों का समय भी समाप्त हो रहा है, उससे पहले हम एक बार फिर से अपना पता बता देते हैं। बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स 3035, नई दिल्ली 110003, और ईमेल का पता है
hindi.letters@bbc.co.uk।
इसी के साथ हमें अनुमति दीजिए, नमस्कार।
और अब कार्यक्रम में आपसे विदा लें, उससे पहले मुख्य समाचार एक बार फिर भूमिका राय से।
बीबीसी समाचार। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि अगर उनकी पार्टी बहुमत से आती है तो वो 30 दिनों के अंदर राज्य को स्वायत्तता देने का प्रस्ताव पारित करेंगे। तुर्की के रक्षा मंत्री ने उत्तरी सीरिया में कुर्द लड़ाकों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की चेतावनी दी है। फ्रांस के एक मंत्री ने कहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भले ही अपने सैनिकों को सीरिया से हटाने का फैसला कर लिया है, मगर फ्रांस के सैनिक अभी भी वहां तैनात रहेंगे। स्पेन के तटरक्षकों ने कहा है कि उन्हें अंडलुसिया प्रांत के पहुंचने की कोशिश कर रही अफ्रीकी नाव से 11 शव मिले हैं।
जापानी शासन के दौरान जबरन मजदूर बनाए गए 1000 से अधिक दक्षिण कोरियाई लोगों ने मुआवजे को लेकर अपनी सरकार पर मुकदमा किया है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला राजेश चौहान ने। अगला प्रसारण नमस्कार भारत सवेरे 6:30 बजे। तब तक देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए bbchindi.com के साथ। फिलहाल मानसी दास समेत पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।